कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यमुना तीरावन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा
युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराश्रीमद भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें इस कुंडल कृष्ण प्रभु का संग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी का अल्प परिचय देना चाहता हूँ। प्रभु जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है। उनके माता पिता दोनों परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षित हैं और मीरा रोड मंदिर में रहकर सेवा करते हैं। तो प्रभु जी का जो बचपन है वो भी मीरा रोड मंदिर में भक्तों के संग में और भक्तों की सेवा करते करते निकले। और 1999 में प्रभु जी ने भी परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से हरिनाम दीक्षा स्वीकार की और 2001 में उन्हें ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई। तो पढ़ाई करने के बाद वे अपने जो फैमिली बिजनेस है डायमंड बिजनेस हीरो के बिजनेस में थे, लेकिन भागवतम और अन्य ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि डायमंड बिजनेस छोड़कर अभी वास्तविक जो रत्न है भागवत रत्न हरि कथा रत्न उसके व्यवसाय में जाना चाहिए। तो फिर 2005 में उन्होंने व्यवसाय से निवृत्त होकर के पूरी तरह से भागवतम और भगवद्गीता के प्रचार को पूर्ण रूप से अपना लिया और अलग अलग जगह पर जाकर कथा करते हैं। 2005 में भाई को उन्होंने बिजनेस सौंप दिया और भगवद्गीता भागवतम के फुल टाइम टीचर के रूप में सेवा करने लगे। 2008 में उन्होंने गुजरात में भावनगर नामक जगह पर वहाँ पर इस्कॉन के कार्यक्रम शुरू किए। अभी 2 साल पहले वो पूरे मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहाँ पर कई सारे कॉन्ग्रीगेशन भक्त कई सारे ब्रह्मचारी है, बहुत सुचारू रूप से अच्छी सेवा वहाँ पर चल रही है और भावनगर के माध्यम से आसपास के जगहों पर भी प्रभु जी प्रचार करते हैं। तो प्रभु जी इस्कॉन भावनगर के अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हैं, कॉन्ग्रीगेशन टीचर के रूप में सेवा करते हैं और गुजरात में महाराष्ट्र में राजस्थान में और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि कीनिया युगांडा इत्यादि में जाकर के भागवत कथा का प्रचार करते हैं और इस प्रकार से लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने की भागवत समझने की प्रेरणा देते हैं। तो हमें प्रभु जी का संग लगभग 2 साल पहले प्राप्त हुआ था। प्रभु जी ने कुछ भागवत क्लास ब्रह्मचारी क्लास दिए थे। अभी हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी पूना में है और श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में प्रभु जी 3 दिन की कथा कर रहे हैं। तो SMS भेजा था आप सबको पता रहेगा, नहीं तो कल पहला दिन था, आज है शाम को और कल शाम को है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। रुक्मिणी मंगल इस संदर्भ में प्रभु जी कथा कर रहे हैं और आज सुबह यहाँ भागवतम क्लास के लिए अपना संग देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए हम उनका श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल। इस ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु की
गौर भक्त वृंद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ्यकिम्। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 27। काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षो देव गुह्यं स सस्मितं ताम भाषतः कालकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षो देव गुह्यं स सस्मितं ताम भाषत कालकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षो देव गुह्यं स सस्मितं ताम भाषत। वैष्णवी माता ओके। काल कन्या, काल की पुत्री द्वारा उदित कहे गए वच शब्द निशम्य सुनकर यवन ईश्वरः यवनों के राजा चिकीर्षु पालन करने की इच्छा से देव विधाता का गुह्यम गुप्त कार्य स उसने सस्मितम हंसते हुए ताम उसको अभाषत संबोधित किया। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, काल कन्या का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगे और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगे। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:146 में कहा गया है, एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जेछे नचाय तेछे करे नित्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है, शेष सभी उनके दास हैं। यवनराज भी श्री कृष्ण के दास थे, अतः वह भी कालकन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहे थे। यद्यपि कालकन्या का अर्थ जरा या बुढ़ापा है, किंतु यवनराज को, यवनराज कालकन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर कृष्ण की सेवा करना चाह रहे थे। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल अर्थात मृत्यु से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं कि मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करते रहेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति हो ही नहीं सकती। मोहवश लोग यह सोचते हैं कि उनका ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा आदि समस्याओं जैसी की तैसी बनी हुई है। तो भी मूर्ख विज्ञानी, प्रभुवादी कह सकते हैं विज्ञानियों को मूर्ख, तो भी मूर्ख विज्ञानी सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की, जब काल कन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर भी आक्रमण करता है तो वे काल से भयभीत होते हैं। यदि वे विवेकी हो, जो अविवेकी है वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही ये जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद भी कुछ भी जीवन नहीं है, अतः इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। आमतौर से लोग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यवनराज ने कालकन्या का उपयोग इसी कार्य के लिए करना चाहा। धन्यवाद। समाप्त। अनुवाद कृपा करके पुनः एक बार दोहराइए सभी भक्त। कालकन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगे। विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगे। तब उसने कालकन्या को इस प्रकार संबोधित किया। अब किस प्रकार संबोधित किया वो कल आएगा। इसमें तो केवल संबोधित करने की कला बताई गई। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन हम भक्तों का प्रयोजन प्रेम है, ना तो ज्ञान है ना वैराग्य। अनुराग अपने आप प्रकट हो जाता है जहां भक्ति हो। तो श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, ये प्रेम ग्रंथ है। हमारा प्रयोजन प्रेम है और उस प्रेम तक पहुंचने के लिए भगवत विषय ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही भगवत विरोधी, भगवत बाधक, भक्ति बाधक ज्ञान का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भगवान को जान लेने पर सब कुछ ज्ञान हो जाता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वैवं विज्ञातम भवति, उपनिषद कहता है। लेकिन उसी भगवान को जानने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है। लेकिन आज समस्या यह है कि सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मुझे ज्ञान दो। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मुझे ज्ञान है। इसलिए आप सब वैष्णवों के चरणों में सादर वंदन के साथ एक निवेदन है कि हम सब भक्तों को एक सद्गुण जीवन में धारण करना चाहिए, और एक सद्गुण, एक गुड क्वालिटी अगर हम में आ गई तो अन्य जितने भी वैष्णव उचित सद्गुण है हम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक सद्गुण अगर हम में आ गया तो अन्य जितने भी अच्छे सद्गुण है वैष्णव के वो अपने आप हमारे हृदय में हमारे अंदर आ जाएंगे। वो कौन सा गुण है? वो है सुनने का गुण। गुरु साधु से वैष्णव से सत शास्त्र श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों को सुनना, अगर ये एक गुण आ गया तो और जितने भी गुण है वो अपने आप आएंगे। हिंदी में कहूं तो जो सुनता है उसकी सुधरने की पूरी आशा है, और जो बोलता है उसकी समझ लीजिए। इसलिए प्रयास करना है प्रेमी भक्तों के चरणों में बैठकर सुनने का। श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन, हमारी भक्ति लता का सिंचन इसी से होता है। तो देवर्षि नारद प्राचीन बरही को ये प्रसंग सुना रहे हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध बड़ा विख्यात प्रसंग है ये, और हम भक्तों को वैराग्य की प्रेरणा देता है। और हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, और चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास के विषय प्रसंग में कविराज महानुभाव ने कहा है, महाप्रभुर गण सब वैराग्य प्रधान। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स की भक्तों की एक विशेषता है कि उसमें विषयों के प्रति वासना के प्रति संसार आसक्ति के प्रति वैराग्य प्रचुर होता है। और यहां देखी प्रीत है गौर भगवान, और इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। अगर कोई भक्त सरल सादा कपट छोड़कर साधना सेवा रत है और कृष्ण सेवा गुरु शास्त्र निर्देश में अनुराग से करता है और साथ साथ में विषय भोग वासना से मन वचन काया से वो वैराग्य दिखाता है, दिखाना भी नहीं है रियल करना है, दिखाना शब्द बोल दिया, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और दिखाने का एक दुविधा यह है कि हम संसार को कुछ भक्तों को दिखा सकते हैं, वो लोग बेचारे साधु फंस भी जाए, लेकिन ये तो फंसने वाला है नहीं। गीता में कहते हैं कि जितने चीटर चोर है उसका तो मैं सरदार हूं, छलम छलयताम अस्मि। मैं कुंज बिहारी में कल दर्शन करने गया तो उधर लिखा था बीवे थी चोरों से सावधान, मैं बोला उसको तो अल्टर में बिठाया तुम लोग, चोराग्रगण्यम पुरुष उसी से सावधान होना है, एक बार कहीं खींच लिया तो फिर संसार के नहीं रहोगे। तो सब धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्ण करते रहोगे, दुनिया कहेगी पागल हो गया, कोई धन दौलत में पागल, कोई पुत्र परिजन में पागल, हम है राधा वृंदावन चंद्र बिहारी के पागल। महाप्रभु गण सब बातुल, बंगला में बातुल कहते मैड को बातुल। रघुनाथ दास के विषय में लिखा है कि चैतन्य र बातुल की राखी ते पारे, जो चैतन्य के प्रेम भक्ति में पागल हो गया उसको कौन फिर संभाल सकता है, क्या सामर्थ्य है माया में। तो इसके सामने तो दिखावा चलेगा नहीं। आज संसार में सबसे बड़ी बाधा है दंभ। दंभ एक शब्द है ना गीता का, दंभ का हिंदी है जो नहीं है वो दिखाना। परम स्वार्थी होते हुए भी समाज में सच्चे समाज सेवक के नाम में रोशन होना, परम अज्ञानी मूड होते हुए भी अपने आप को पंडित्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाना है कि मैं बड़ा स्कॉलर हूं, मैं ये सब दंभ है। धनवान नहीं होते हुए भी दिखाना, किसी का उधार लेके इधर लेके पहन के फिर दिखाना कि मैं भी हूं, ये सब फालतू बातें हैं। मतलब दंभ भगवान को पसंद है दिखावा। इसलिए हम भक्तों को भी भक्त दिखाने की अपेक्षा बनने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए, रियल में सरल आर्जवम ऋजुता। अर्जुन शब्द ऋजुता धातु से बना है, जो बड़े सरल थे, इसलिए गीता ज्ञान के अधिकारी भगवान ने चॉइस किया अर्जुन को। अनुसुई वे ईर्ष्या रहित थे, भक्त भी थे, सखा भी, बहुत सारे गुण थे, लेकिन इसमें कुछ सरल थे। सिंप्लिसिटी इज रियल ऑर्नामेंट, वही वस्तु सच्चा आभूषण है हमारा। तो भगवान पसंद करते हैं इस सद्गुण को, और ये सद्गुण सुनने से आएगा। भक्तों के चरणों में बैठकर भागवत सुनेंगे तो ये ग्रंथ भागवत का श्रवण हमें भक्त भागवत की उपाधि से नवाजेगा, हमें भक्त भागवत बनाएगा। तो देवर्षि नारद प्राचीन बरही नाम के राजा को ये पुरंजन उपाख्यान सुना रहे हैं, जिसकी चर्चा आप कई महीनों से शायद कर रहे होंगे, दो अध्याय तो चल गए इसके। तो बैकग्राउंड में हमें ज्यादा नहीं जाना, लेकिन हम नारद जी के विषय में एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य वक्ता तो नारद है। और नारद जी ऐसे वैद्य है, ऐसे डॉक्टर है कि किस रोगी को कौन सा इंजेक्शन देना बढ़िया से जानते। किसी को तत्व का देना है, किसी को रस का देना है, किसी को वैराग्य का देना है। राजा है या ऋषि हो या संत हो या स्त्री हो, नारद जी के सामने जो भी आता है उसको कैसे डिवोटी बनाना है, कैसे कृष्ण भक्त बना, इसमें कुशल, वेरी एक्सपर्ट नारद जी है। इसीलिए भक्ति महारानी जब नारद जी को वृंदावन में मिली और प्रणाम करती है, तब वो यही बात को रखती है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचनम रचनमेकम केवलम चाकलयम ध्रुव पदम पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। पद्म पुराण भागवत महात्मय प्रथम अध्याय अंतिम श्लोक। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, हे नारद जी आपकी दया दृष्टि पड़ने पर कयाधु का बेटा कायाधव मतलब प्रहलाद जयति माया, दुर्लभ जो दुरत्य या माया है उसको जीत लिया वो आपकी कृपा से। क्योंकि वचनम रचनम एकम, आपके जो बोलने की कला है, आपके वचन की जो रचना ऐसी होती है कि किसी को सीधा दिल में उतर जाता है। वो ध्रुव ध्रुव पद को पा गया, आपने सर पर एक हाथ रख दिया और बोल दिया कि जाओ मधुवन भजन करो, करने के बाद पा गया अमोक दर्शनम। तो सुरर्षे मद भाग्योसी तब दर्शनात्, दर्शनम साधुनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, साधुओं का दर्शन सर्व सिद्धि फल प्रदान करता है। मेरा भाग्य है कि हे नारद जी आपका दर्शन हुआ और आपके दर्शन से हे ब्रह्मपुत्र सकल कुशल पात्रम, कुशल मतलब एक्सपर्ट, सारी सकल मतलब ऑल सब में आप बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। तो चाहे कोई भी हो, राजा हो या साधु, हरियस्व हो चाहे नारद जी का चरित्र आप याद करो, वाल्मीकि हो चाहे व्यास, सबके गुरु तो यही है। ध्रुव प्रहलाद के ही नहीं, ये छोटे है भगत, उम्र में छोटे, भक्ति में तो उच्च शिखर पर विराजमान है ध्रुव प्रहलाद। महाप्रभु के प्रिय चरित्रों में इनका नाम धुवेर चरित्र और प्रहलाद चरित्र, शतावृत्ति करिया प्रभु सुने अवहित चैतन्य भागवत, 100-100 बार सुने महाप्रभु ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र, बड़ा पसंद पड़ता था चैतन्य देव को गदाधर पंडित के साथ सामने टोटा गोपीनाथ। लेकिन बड़े भक्तों में वाल्मीकि व्यास आदि ये भी इन्हीं के शिष्य है। तो नारद जी ये प्रवचन प्राचीन भरी हो गए, बड़ी अलंकार भाषा में एक उपमा बिठाकर और बड़े रोचक ढंग से। हम वैष्णव वक्ताओं को चाहिए कि नारद जी से ये गुण सीखे कि एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट जो हम बोल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, श्रोताओं को जिज्ञासा रहनी चाहिए कि अब क्या आएगा अब क्या आएगा, वो सो नहीं सकता। अगर श्रोता सो रहे तो उसमें केवल उनका दोष नहीं है, वक्ता का भी है कि प्रवचन ही मरे मरे कर रहा है, तो श्रोता क्या करेगा। कृष्ण रस भावितामति, हमारा जो वक्तव्य है वाक्यावली है शब्दावली है वो शुद्ध होनी चाहिए, प्रेम भक्ति से भरी होनी चाहिए। ये आंतरिक गुण है, लेकिन बाह्य वस्तु है कि वाक्य को कैसे रखना प्रसंग देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये भी एक कला है आर्ट है, और अपने आप आएगा जब हम भक्तों से सुनते रहेंगे तो। नहीं तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, वाग वैखरी शब्दजरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्य विदुष्वश्च भुक्तये न मुक्तये। हम निष्प्राण शब्दों को निर्जीव शब्दों का विस्तार करते रहे उसमें श्रोताओं का कोई कल्याण होने वाला नहीं, भरे पड़े उपन्यास होता सब पोथा पोथी,
संसार में हमारे शब्दों में जान होनी चाहिए, प्राण होना चाहिए, और प्राण कौन है? कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण विषयक शब्द वाणी का ये आभूषण है वैष्णव की, और जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा। जो सुन जिस जो ग्रंथ और जो भक्त को आप सुनते वही बोलेंगे ना, अनायास वो आएगा जीवा पर। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यास यही करना है, शास्त्रों के श्लोकों को रटना है, बोलना है, उच्चारण करना है। क्योंकि इतने विशुद्ध प्रेम भक्ति से भरे कृष्ण शरातीत उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, तो उनके विषय में बोले गए भागवत के गीता के शब्द भी शरातीत है, अक्षर है, क्षय रहित है, और हमें भी उसी पोजीशन में ला सकते हैं। इसलिए गीता का जो सूत्रात्मक संदेश गोविंद ने दिया वो श्लोक है ना पांचवें अध्याय में, न बुद्धि भेद जनयेत कर्म संगिनाम ज्योत्से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरे। जो संसार के विषयों में लोग लगे हैं, नेचुरल है, रचना ही ऐसी है, रजो तमोमय सृष्टि है, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां पर विषयों के प्रति लोगों की, जीवों की, हम सब भक्तों की भी। हम लोग तो रोके हुए हैं कि कहीं मौका मिल जाए तो पानीपुरी फिर गटप से खा ले, ये तो रोके हुए है कि नहीं खाना है, मना किया है, देख रहे हैं लोग, अंदर से अभी वासना गई नहीं है। यस और नो, सच है कि झूठ है? तो मौका नहीं मिल रहा है भैया, डर के मारे फड़े फंसे हम लोग की भाई कहीं प्रवृत्ति वृत्ति हमारी वेश साधुता आई है, साधुओं की वृत्ति जो है स्वभाव, इसके लिए तो बहुत साधना करना पड़ेगा प्रभु, बहुत सेवा करना पड़ेगा, कृपा चाहिए गुरु वैष्णव की, ऐसे थोड़ी काम बनता है। तो हम बोलते रहेंगे, पंडिताय प्रदर्शन करते रहेंगे, वाग वैखरी शब्द जरी और शास्त्र व्याख्यान में भी हम कुशल हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम भक्ति शून्य हृदय वाणी है तो भुक्तये न मुक्तये, वो अपनी की भी मुक्ति नहीं कराएगी, श्रोताओं की कहां कराएगी, और भोग वासना बढ़ी। इसलिए संसार में देखो इतनी कथाएं होती है, लेकिन लोगों में विषय वासना के वैराग्य कहां हो रहा है, भोग प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्रतिष्ठा के नाम पर सब हो रहा है। अब आप देख ही रहे हो इस दृश्य संसार। अरे भाई, जो वासना शून्य हृदय है उसका प्रमाण है विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। निर्मल चित तो सोई साचो कृष्ण बिना जिन और न भावे सोई रसना जो हरि गुण गावे। वाणी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अमरीश के भाव को सूरदास जी ने कहा है कि वही वाणी है जो कृष्ण रसना कीर्तन करती है, और जिसका चित्त निर्मल हो चुका है उसका प्रमाण यह है कि कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा के अलावा उसे कहीं रचता नहीं, जचता नहीं। कृष्ण बिना जिनी और न भावे। अब कृष्ण को छोड़कर, प्रेम भक्ति के पथ को छोड़कर, पदार्थ को जो चाहता है वो इस प्रेम शास्त्र का, प्रेम ग्रंथ का, श्रवण कीर्तन का अधिकारी ही नहीं है। तो हमें महाप्रभु ने उस परंपरा में, प्रभुपाद जी ने बहुत अमूल्य वस्तु दिया है, श्रीमद् भागवत प्रेम रस शास्त्र, और उसके जो ये शब्द है वो प्रेम भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। और इसका अगर हम सेवन करेंगे, नित्यम भागवत, सेवन का अर्थ है अध्ययन, चिंतन, मनन, विचार, उसके अर्थों का रस आस्वादन, और कहां मनमाना नहीं, वैष्णव आश्रयों में आचार्यों के अनुगत होकर, तब हम इस पदार्थ को, प्रेम को पाएंगे। तो देवर्षि नारद हेड है इनके, मुख्य आचार्यों में उनका नाम है, और वे प्रवचन कर रहे हैं, सुवर्ण सेन को मिले नवद्वीप में, यह प्राचीन बरी को मिल रहे हैं, वाल्मीकि को मिले, व्यास की भी बुद्धि चकरा गई थी भागवत की प्रेरणा, जहां जहां भी गए वृंदावन चंद्र के चरणों में रास्ता खोल दिया इसने। तो प्राचीन बरी यज्ञ रथ थे, यज्ञ कर्म तो वेद अनुकूल है ना, लेकिन उससे भी बड़ी बात सिखाने जा रहे हैं, इसलिए बड़ी रोचक ढंग से बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग वे में। हमारे पुराणों में दृष्टांत दिया गया है कि नारद जी के सामने लक्ष्मी जी आ गई और नारद जी के सामने शनिदेव आ गया। कौन सा वार है? शनिवार है। शनिदेव की सब बड़ी तेल चढ़ाई पढ़ाई करते हैं लोग आज, तो इसलिए करते हैं कि आप दूर रहो। सारे देवताओं की पूजा इसलिए होती है कि आप दर्शन दो, शनिदेव की पूजा इसलिए होती है कि कभी भी दर्शन मत दो, पड़ोसी को दो, दुश्मन को दो, साला मरे वही भी। शनिदेव को दूर रहने के लिए उपासना होती है कि कहीं मिल मत जाना भैया, क्योंकि दर्शन ही खतरनाक है तुम्हारे, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए सत्यानाश निकल जाए आदमी का, इसलिए दूर रहो महाराज। इसलिए तेल मालिश होता रहता है शनिदेव का, और वही शनिदेव सामने, शनिदेव से तो सब लोग दूर ही रहना चाहते। अभी उनकी भी एक कथा है, उनको एक शाप मिला था, कुछ गड़बड़ किए थे। गड़बड़ तो बड़े बड़े लोग करते हैं, हम छोटे लोगों को क्या कहना है। इसे गड़बड़ करने में टेंशन मत लो, लेकिन महामंत्र जपते रहो बस, गड़बड़ तो होती रहेगी, क्या करे, ऋषि देवता भी मुक्त नहीं, हम तो मनुष्य है। मतलब मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि आप करते रहे लेकिन टेंशन मत लेना, अटेंशन वृंदावन चंद्र के ऊपर रखो। पर टेंशन कभी किसी का कम हुआ नहीं भक्तो, हम लोग थक गए, 50-40 साल हो गए, एक टेंशन सॉल्व करते 10 पड़े रहते, अपने टेंशन को सलाम, उसको भी महाप्रसाद महामंत्र का दो, तुम भी जप सर, क्योंकि एक टेंशन सॉल्व करेंगे 10 पेंडिंग पड़े, इसलिए सॉल्व ही नहीं करना है। किसी का आज तक सॉल्व हुआ नहीं भैया, दुखालय हमें, इसलिए महाप्रसाद गोविंदे और कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले सब तेरे हवाले। तो शनिदेव मिल गए तो नारद जी को कहे, नारद जी, नारद जी ने सोचा कि आज ये कहां पधारे, रास्ता मोड़ लिए, लेकिन शनिदेव ने कहा रुको, खड़े रहो जरा। तब तक सामने से लक्ष्मी जी आ रही थी, लक्ष्मी जी भी विश्व सुंदरी, सौंदर्य की अधिष्ठात्री है भाई, तो दोनों है। नारद जी ने कहा भाग्य है हमारी भाई, एक तरफ काले काले दुर्गति के आचार्य शनि महाराज, एक तरफ गोरी गोरी सौंदर्य की महामूर्ति लक्ष्मी, साथ में दर्शन हो रहा है। हरे कृष्ण, मेरा काम है कथा करने कैलाश में जाना, राधे राधे चलते हैं। अरे रुको और बताओ कि हम दोनों में सुंदर कौन है। शनिदेव ने कहा, नारद जी ने कहा फसावट है हमारी भैया, वो तो पूरी दुनिया जानती है कौन सुंदर है, लेकिन क्या मजाल के बोल दे कोई। यही बात वृंदावन में भी हो गई। हमारे वृंदावन चंद्र प्रिया जी से एक बार बरसाने में कहते हैं कि हे राधा एक बात बताओ। ललिता जी ने कहा कौन सा प्रवचन करना है आज आपको। देखिए प्रवचन नहीं करना है, हम तो परमिशन सर्टिफिकेट लेने आए हैं। पर ठाकुर जी ने एक आईना निकाला, ग्लास आईना, और उसमें कहा कि देखो राधा ये बताओ कि तुम सुंदर हो कि हम सुंदर है। सारी सखियां हंसने लगी, ये काला पूछ रहा है, तेरो मुख निको कि मेरो मुख प्यारी, तुम्हारा मुखड़ा सुंदर है कि मेरा मुखड़ा, राधे तुम बताओ। अब ललिता विशाखा हंस रही है कि ये कोई पूछने वाली बात है। लेकिन कृष्ण को भी गुमान था अपने सौंदर्य पर, और क्यों नहीं होगा, एक ही तो काला है जो सारे गोरे को दीवाना बना चुका है। कोई मरता है किसी के गाल पर, कोई मरता है किसी की चाल पर, कोई मरता है किसी के बाल पर, सब मरते हैं किसी के माल पर। गांधी बापू 2000 गुलाबी नोट, सब मरते हैं, मरकर भी जिंदा वह है जो मरते हैं देवकी के लाल पर। ये वास्तव में जी रहे हैं जो इस जीवन मुक्त से उच्चते, बाकी तो सब मर ही रहे। हमारे वृंदावन के प्रेमियों ने कहा है कि कन्हैया अच्छा है तू लड़का है, कहीं लड़की होता ना कट जाते गले करोड़न के, करोड़ लोग काट देते गला तेरे लिए, लड़का है फिर भी सबको मर रहा है सब तेरे पर, कहीं लड़की होता तब तो सब ब्रह्मचारी मर तो कृष्ण भी कुछ कम नहीं है ना सौंदर्य में, ऐश्वर्य है एक अपना। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम भीष्म देव कहते हैं, तो इसलिए पूछ रहे हम भी कोई कम थोड़ी है, तुम बताओ। तब राधा रानी कहती है क्या पूछ रहे हो, मेरो मुख चंदा तेरो मुख रेन अंधियारी, मेरा मुख चंद्रमा है और आपका मुख काली काली रात है, कोई पूछने की ज्यादा कुछ बातें नहीं पूछने में ही हमारी भलाई है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए क्या व्याख्या करेंगे बताओ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रमाण तो उसके लिए दिया जाता है जो प्रत्यक्ष ना हो समझ में ना, जो सीख रहा है प्रकट हो रहा है उसके लिए क्या प्रमाण दे। इसी तरह यहां पर भी हो गया, शनि देव कह रहे बताओ, इसने कहा अगर हमने कह दिया लक्ष्मी जी सुंदर है तो शनि हम पर कोप करेंगे, और अगर कहीं बता दिया शनि देव को खुश करने के लिए प्रभु जी आप सुंदर तो लक्ष्मी जी नाराज, और लक्ष्मी जी को नाराज नहीं करना चाहिए, मंदिर चलाना है डोनेशन चाहिए, ठाकुर जी भी चलते तो लक्ष्मी के ही बल पर ना। तो नारद जी ने कहा क्या करे, कृष्ण सही कृष्ण भजे सही बड़ो, बड़े बुद्धिमान भगवान देते ना ददामी बुद्धि योगत्वम, क्योंकि नारद जी प्रेम से भजन करते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि मैं उस भक्त को बुद्धि देता हूं जो प्रीतिपूर्वक माम भजती, जो मरे मरे भजन करता है उसको नहीं, उत्साह आनंद से भजन करता है उसको प्रेम के से। तो तुरंत दिमाग की बत्ती जली बिना मेंटर्स के नारद जी की। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं पता चलेगा, थोड़ा शो करना पड़ेगा आप लोगों, एकदम पास में सामने आके दोनों खड़े हो बताओ कौन सुंदर, थोड़ा डिसीजन लेने के लिए आगे पीछे चलना पड़ता है, तो आप 100 कदम जाइए दोनों 100 कदम रिटर्न आइए, फिर मैं डिसीजन देता हूं कौन सुंदर है। अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी और शनिदेव 100 कदम चले, फैशन शो के फाउंडर आचार्य यही लोग है। ये जो होता है ना आगे पीछे घूम के दिखाना क्या कौन कपड़ा है, दोनों चल रहे। तब तो नारद जी ने कहा बस हो गया फैसला, बताओ क्या है। शनिदेव आप जब जा रहे थे बड़े सुंदर लग रहे थे, लक्ष्मी जी जब आ रहे थे तो बड़े सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल वैज्ञानिक उत्तर दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है सबको, और शनिदेव जाए उसमें ही मजा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट उत्तर था, दोनों खुश। और नारद जी ने कहा एक बार जो एक कोई खल आदमी मतलब क्रोधी आदमी एक बार खुश हो जाए ना, ज्यादा उसके पास रुको मत, काम फिनिश आउट, पतली गली पकड़ो। हम प्रचारकों भी मंदिर से बाहर उतना ही जाना चाहिए, वहां उतना ही रहना चाहिए जितना टॉयलेट में रहते हैं, काम फिनिश सीधा वृंदावन चरण में आके भजन करो, नहीं तो फंसेंगे फिर। तो हमारा जितना कर्म है जितना सेवा है उतना करके, जैसे टॉयलेट में कैसे करते, वहां कोई गार्डन है क्या, कहां कब निकले, ऐसे ही संसार से भागकर हम भक्तों के संग में मंदिर में हमारी सेफ्टी है हमारी सुरक्षा है। तो नारद जी ने सोचा दोनों खुश है तभी हरे कृष्ण महाराज चलते हैं अभी कल मिलते हैं। नारद जी मन में सोच रहे कभी नहीं मिलेंगे आपसे, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो प्राचीन बरही को प्रवचन करने वाले वक्ता जो है नारद जी बड़े कुशल है, बहुत एक्सपर्ट है। आप कहोगे कि ऐसी कुशलता कहां सिखाई जाती है, सपोज एक प्रश्न हो तो इसका परमानेंट उपाय सॉल्यूशन यह है कि हमें महामंत्र का आश्रय लेना है। कृष्ण नाम संकीर्तन में वो शक्ति है कि आपकी बुद्धि को आपकी वाणी को शुद्ध निर्मल पवित्र कर देगी, और फिर किस समय कब क्या कितना कैसे बोलना है, मतस्मृति ज्ञानम ओहनम च वो देते हैं। तो कई लोग कुछ भी लेकर आते भूल जाते हैं, वहीं आके फ्यूज ऑफ हो जाता है, महात्मा गांधी बोलना था घात्मा माती बोल देते, उल्टा शब्द इधर उधर हो जाता है ना, हम लोग का वाणी लड़खड़ा जाती है। लेकिन वांगमय जीवितम हमारी वाणी का जीवन आभूषण उस गिरास में एक अक्षरम जो शब्द है गीता की व्याख्या बड़ी सुंदर की, इसके इष्ट आराध्य कृष्ण है और इसी की सेवा में उसको लगाएंगे ऋषि के न ऋषि के सेवनम, तो वही भगवान कृपा करेंगे। तो बड़ी रोचना ढंग से कथा चल रही है, काल कन्या की बात हो रही है, बड़ी खतरनाक कन्या है ये। काल मतलब मृत्यु समय जो भी आप उपमा दो, और उसकी बेटी उसकी सेविका, मतलब बुढ़ापा। आप लोग इससे परिचित हो प्रसंग से कि काल कन्या जो बुढ़ापा का प्रसंग है उसको एक कथा के रूप में पुरंजन के सामने रखा जा रहा है, तो बुढ़ापा को काल कन्या कहा गया। और यहां पर इस प्रभु जी का नाम क्या है, यवन अगले श्लोक में था, यहां पर नारद जी ने या सुखदेव जी ने इसका लाइव रिले किया जब सुक्ताल में परीक्षित की सभा में, तो यवन ईश्वर बोल दिया, यवनों के ईश्वर। वो किसकी उपमा है, यवनेश्वर किसको कहा गया इस प्रसंग में, आप पीछे सुन चुके हो ना, भय को, डर जो फियर है उसको भय कहा गया। तो काल कन्या भय से चर्चा कर रही, मतलब बुढ़ापा हमारे मानसिक डर से चर्चा कर रहा। एक कथा तो है कि एक स्त्री काल कल्याण नाम की स्त्री एक यवन नाम के पुरुष से चर्चा कर रही है, चर्चा भी बड़ी सुंदर कर रही है, विल यू मैरी मी, निवेदन करेगी आप मुझसे शादी करो, भद्रम माम भजस्वम मे दयाम कुरु, कल का श्लोक होगा शायद, कि आप मुझे स्वीकार करिए, मुझे सेवा में रखिए, मेरे पर दया करिए। और धर्म बता रही है, पौरुषम धर्मम आर्तानाम अनुकंपितम, महान पुरुष का धर्म है कि जो दुखी है उस पर दया करे। मैं दुखी हूं, ढूंढ रही हूं दूल्हा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और बुढ़ापा को कौन पसंद करता है आपके पुणे में, कोई करता, सब मरी मसाला कॉस्मेटिक ढूंढ रहे कि कैसे जवान रहे। बुढ़ापा जरा जो है, जरा संस्कृत वर्ड से बुढ़ापा का ओल्ड एज, सब डरते हैं उससे, कोई पसंद नहीं करता, सब उसको दूर रखना चाहते, लेकिन ये बाय फोर्स वरण करती है। तो यवन जो शब्द है वो भय के लिए है, लेकिन यवन एक जाति है, म्लेच्छ जाति, मुसलमान आदि नीचे की जाति है, जो शूद्र से भी निम्न कक्षा में आते हैं, कंका यवना खसादय, सुखदेव जी जो प्रथम मंगलाचरण करते हैं उसमें बोलते हैं, उसमें यवन की परिभाषा प्रभुपाद ने दी है, यहां पर भी दी है आगे, कि जो वेद के नीति नियम को नहीं मानता, पशुवत पापमय जीवन रत होता। लेकिन हम चैतन्य चरितामृत से यवन शब्द के ऊपर चैतन्य देव के भाव को भी आप भक्तों के सामने स्मरण कराना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत के वचन है, भगवत जे नामाने से यवन सम, जो भागवत नहीं मानता वो यवन है। यवन का डेफिनेशन देखो, एकदम नीट एंड क्लीन दे दिया है, जो भागवत नहीं मानता, भागवत नहीं मानता मतलब भक्त को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, भक्ति को नहीं मानता। भागवत के विषय क्या है, भक्त भक्ति भगवान, यही है भागवत। और इसको जो नहीं मानता, से यवन तार शास्ता आछे प्रभु जन्मे जन्मे यम, शास्ता मतलब उसके कंट्रोलर, उसको पीटने वाले कौन है, यम, जन्मे जन्मे यमराज उसके लिए बढ़िया से ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, आजा बेटा हमारे दूत संडे भी छुट्टी नहीं रख रहे तुम्हारे लिए, पधारो ओवर टाइम करेंगे। इसीलिए भागवत जे न माने से यवन, और भागवत का जो विरोध करे, उसमें विक्षेप करे, बाधा दे, वो यवनों का ईश्वर उनका सरदार मतलब। तो ये काल कन्या भाई, वो तो एक अलग बात, मैंने जस्ट आपके लिए यवन के लिए क्या लिखा गया है सीसी में वो बताया। अब यहां पर काल कन्यो दितवचो निशम्य यवनेश्वर, काल कन्या ने जो बोला उदित वच इस यवनेश्वर ने सुना। निशम्य शब्द का एक अर्थ है सुना, इतना ही नहीं, बाह्य अर्थ है सुना, लेकिन उसका आंतरिक भाव है उस पर विचार किया। कभी कभी हम सुनते हैं उस पर सोचते नहीं है, बोले बोलता रहता है, इकड़ुन तिकड़ुन गेला, कितने प्रवचन हमारे इकड़ुन तिकड़ुन चले जाते हैं, हम उस पर विचार थोड़ी करते। विष्णु दूतों ने गोकर्ण प्रसंग में पद्म पुराण में यही कहा, श्रवणम कुरु चिंतनम मा कुरु, विमान एक के लिए आया, सब श्रोता लोग क्या घंटी बजा रहे थे, बोले नहीं, बोले इसने श्रवण तो किया, चिंतन मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं हुआ, और इसलिए जो पूर्ण प्रसाद प्राप्त होना वो नहीं हुआ, लेकिन इस भूत ने किया, प्रेत ने। वहां पर समझना चाहिए, शास्त्रों को याद करना चाहिए। निशम्य मतलब ध्यान से सुनना, उस पर विचार करना कि क्या बोला जा रहा है, और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना बुद्धि से कि अभी मुझे क्या करना है। बिना संकल्प का आपका श्रवण अधूरा है। जैसे श्रवण में बहुत बार सुनते हो शुद्ध भजन करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, आल हम सुनते हैं, लेकिन उस पर संकल्प करते कि आई डू इट, अब मैं ये नहीं करूंगा ये करूंगा, संकल्प नहीं है आपका और खाली श्रवण हो रहा है तो अधूरापना है ना, वो प्राप्त नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से। तो जो बात हमारे लाभदायक है, हमारे आत्मा के लिए प्रसिद्ध थी, अच्छी है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए ना कि मैं वही करूंगा। प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, उसके लिए भक्तों के संग में कृपा ढूंढनी है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, केवल श्रवण हो रहा है, तब अधूरा है। निशम्य मतलब ध्यान से सुना, अर्थात सोचा कि अभी मुझे क्या करना है। मतलब एक बात ये समझिए, कोई आकर आपको ऑफर दे कि हमसे शादी करोगी तो क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि मुझे फंसना नहीं है इस चक्कर में, एक अर्थ ये भी ले सकते हैं। और जब आपको नव जो काम नहीं करना है वो भी एक कला है कि कैसे नहीं करना है, इस पर बड़ा विचार किया गया। चिकीर्षु देव गुह्यम, चिकीर्षु मतलब क्रिया, करी किया उसमें, लेकिन क्या किया? देव गुह्यम, देव मतलब विधाता, सुप्रीम विधाता, प्राइमरी कॉज कृष्ण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो तो वही एक सर्व कारण कारण। तो उसका गुह्यम मतलब उसका सीक्रेट, उसका रहस्य कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। ये तो कह रहा है कि ये करो, लेकिन मुझे क्या सोचना है कि मेरा सृष्टा जो मेरा दृष्टा भी है मुझे देख भी रहा है, और मेरा क्या कर्तव्य है और मेरे लिए उसने क्या आज्ञा है, उस पर विचार करना है और उसके अनुकूल ही चिकित्सा करनी है। मतलब आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, इस पर स्थित होना है साधक को। मैसेज ये है इसे, यवनेश्वर भी सोच रहा है और बुढ़ापा शादी के लिए बड़ी लालायित है, और एक बात ध्यान रखना, ये कितना मना करो ये मानने वाले है नहीं, बुढ़ापा तो पकड़ेगी ना, कोई भले पसंद करे या ना करे, उसके लिए कितनी प्रार्थना करे, किसी को आज तक छोड़ी नहीं है, ये भक्तों को नहीं प्राप्त हुई है। कुछ भगत ऐसे जैसे सनत कुमार, याद करिए, बूढ़ा का को हरे कृष्ण बोल दिया, बोले चल घूमती रहे पुणे में जा, तू हमारे आवास काम नहीं है तुम्हारा। नारद जी को नहीं है बुढ़ापा, प्रवचन करने वाले को नहीं है, सुखदेव जी नहीं है बुढ़ापा, कितने भक्तों के नाम है। हमारे ध्रुव महाराज के प्रकरण में भगवान जब शंख चक्र लेकर गरुड़ पर आए मधुबन में, और ध्रुव जी ने तो कहा कि स्वामी कृतार्थ अन्य वरम नहीं, मैं तो अब कुछ नहीं चाहता, पहले बहुत कुछ चाहता था, अब केवल आपको चाहता हूं, अब तो कुछ नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा तू नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं तुझे देना, नहीं तो आगे पूना में लोग कथा कहेंगे कि भक्त को इतना तपस्या करा लास्ट में ब्रेन वॉश कर दिया, साला भिखमंगा बना दिया, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कर दिया। तो भगवान सब ऐसे ही करते हैं, इसलिए मेरी इज्जत रख ले बेटा, मांग ले कुछ। इसने कहा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए बस, बोले हमको देना है। तब भगवान ध्रुव नहीं चाहिए, और भगवान को लगा ये बेटा लेगा भी नहीं क्योंकि महाराष्ट्र का आधार कार्ड नहीं है इसको, ये नहीं लेगा सच में। हम लोग तो झूठ बोलते कुछ नहीं चाहिए, अंदर से प्रभु देखते रहना है, ये तो मैं बोलता हूं ना धनम न जन्म, कहीं सुन मत लेना आप न सुंदरी कविता वाजक, वो भी चाहिए आप भी चाहिए, हम ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं चाहते, आपको भी चाहते, आपसे भी सब चाहते। तो वो वाला श्लोक शिक्षाष्टक में भक्त लोग धीरे धीरे बोलते कभी कभी, कहीं सुन न ले वृंदावन चंद्र, गड़बड़ हो जाएगा, सत्य हो जाए तो भाई तो न धनम, वो तो हम आवृत्ति कर रहे महाप्रभु के भाव की, उसकी वास्तविकता तो, लेकिन उसकी कृपा से हम में भी ये वास्तविकता हो जाए, ये भाव आ जाए सच में, क्योंकि वो शुद्ध वाक्य है प्रभु के, इसलिए दोहरा रहे, लेकिन चिंतन तो करना चाहिए ना। उसको मना कर रहे, कोई भी मना कराएगा नहीं, ध्रुव मना कर रहे, लेकिन भगवान ने कहा 27,000 ईयर्स पृथ्वी के राजा बनोगे, उसको तो नहीं चाहिए, बोले चाहिए हमको, मेरे देखे सुने ना भगत भिखारी, भक्तों को मैं भिखारी नहीं रखता। और दूसरा अव्यहत इंद्रियम बल है, तुम्हारा शरीर 37,000 वर्ष तुम राजा, 37,000 तुम किंग बनोगे इस ब्रह्मा इस पृथ्वी के, उसके बाद ध्रुव लोक रिजर्व है तुम्हारा जो मेरे वैकुंठ जैसा है। प्रभु 50,000 साल में जीऊंगा तब तो क्या करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। बोले नहीं, ऐसे कैसे जवान रहोगे, कितना ही पिज्जा पास्ता खाओ नो कोलेस्ट्रॉल, कितना रसगुल्ला खाओ नो डायबिटीज, दुनिया के सारे दृश्य टीवी कुछ भी देख लो नो चश्मा, कुछ भी नहीं। ध्रुव को देखिए, पढ़िए वहां पर चौथा स्कंद दसवां अध्याय जहां ध्रुव प्रतिचरित्र है। अव्यहत इंद्रियम बलम, तुम्हारे प्रत्येक इंद्रिय चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय, उसकी जो बल है उसकी जो क्षमता है वो कभी कम नहीं होगी, तुम जवान रहोगे। काश हम भी ध्रुव के पास खड़े होते, मिल जाए ब्लेसिंग, जवानी सबको पसंद। और भजन करने के लिए यही अच्छा मौसम है, ऋतु है ये जवानी भजन के लिए, नहीं तो एक दिन प्रकृति हमारा सिंगार करेगी। अभी हम लोग इंसर्ट निकाल नहीं रहे ना, चरणों में झुक जाते तो भगवान को भी हाई करते, ठीक है ना, तू भी मैं भी ठीक है भैया, झुकते नहीं, लेकिन आंखों में पड़ेगा झाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, इसी जिंदगानी में। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी होगा, बस कुछ समय की देरी है। पड़े पड़े पथारी में थूकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारी वाणी में, इसलिए भजन करना है तो कर लो यारो जवानी में। भजन यही ऋतु है, पुष्प ताजा हो तभी चढ़ना चाहिए ना, किसी काम के नहीं है तो मंदिर चलो, इसी के लिए खोला है क्या, वृद्धाश्रम नहीं है ये। भगवान भी चाहते फ्रेश होना है, भोग के लिए इसको यूज करोगे कि भजन के लिए। और एक दिन क्या होगा, पढ़िए कपिल देव उपाख्यान चार तीसरा स्कंद तीसवा अध्याय 16 नंबर श्लोक, वात क्रमोत्ता तारम कप समृद्ध नाडिकम कप फास्पित व्यासम कंठम गुरगुरायते, पथारी में पड़े रहोगे पानी चिल्लाओगे ले बेटा, और पानी पीने के बाद और समस्या, कोई ले जा उठा के नाराज, यही दशा होने वाली है एक दिन हमारी सबकी। अगर इसी तरह कालो न जाति भय भोगा न भोगता भय में, हम भोग नहीं रहे भोग हमको भोग रहे, इसलिए भोगता ये है, हम लोग तो सेवक है, ये गीता सिद्धांत है। और नहीं तो छोड़ेगी नहीं, इसलिए देखो बाल सफेद होता है ना, यहीं से चालू होता है। हमारे साहित्यकारों ने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है एक, कि भैया बाल सफेद होते ये बुढ़ापे के लक्षण है, बुढ़ापे के कई सिम्टम्स है। मृत्यु जब आती है ना तो घंटी बजाती है, पहले तो घंटी बजाती मतलब बाल सफेद कर देती, ये काला मसाला ढूंढता है मेरी तरह, फिर चश्मा लगा ले, दांत गिरा देती है तो दूसरा लगाता है, लेकिन पिज्जा छोड़ेगा नहीं, ये सब घंटिया है। लेकिन एक दिन मौत का घंटा बजेगा, फिर घंटी नहीं बजेगी, तूने मारी एंट्री तो फिर घंटी दूसरी बजेगी, फिर मौत का घंटा बजेगा, फिर नो चांस, गई नोटिस सब। तो कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले समागति वक्तुम लोका शुणुध्वम, मतलब ये बाल कान में आके मैसेज दे रहे। और रामायण सुनिए आपने सबने, दशरथ जी आईना देखते हैं, उत्तर भारत में बड़ी प्रसिद्ध है, तो कांच में ग्लास में आईना में देखते, अरे बाल सफेद हो गए, मतलब सोच लिया कि अभी राज्य मुझे राम को, क्योंकि मुझे भजन करना चाहिए। तो लोग पूछते हैं इस पर कि बाल यहां क्यों सफेद होते, बोले ये बाल नहीं है, सफेद होना छोड़ो कलर, ये काल जो मृत्यु है उसकी दूती उसकी बेटी है, और वो कान में आके कहती है सुनो सुनो बेटा, परस्त्री परधन वांछा त्यजत्वम भजस्वम रमानाथ पादारविंदम, ये दूसरे की स्त्री दूसरे के धन के प्रति इच्छा छोड़ बेटा, मरने को आया है, बुढ़ापा पकड़ ली है, अभी एक ही बचा है मृत्यु लाश, इसलिए रमानाथ रमा जिनके चरणों का भजन करती है लक्ष्मी, उन चरणों का भजन करो, मतलब ये मैसेज दे रही है। या फिर शंकराचार्य को याद करो, अंगम बिना मतलब के हिलते रहेगा मुंह, देखे लोगों के हाथ हिलते कप उठा देना, हमारे गांव में दो तीन बूढ़े, मैं कभी जाता हूं तो देखता हूं वो फिर भी चाय नहीं छोड़ रहे, चाय पीते ऐसे ऐसे पूरा, मैं महाराज पकड़ो तो गिरेगा। और इतनी गर्मी है अभी अभी आप गुजरात में पड़ी है टेम्परेचर 43 है हमारे भावनगर अहमदाबाद, और उसमें भी वो गर्म गर्म पी रहा है, बताओ क्या करें लोगों की दुसादत। माया ने मोह लिया, मति भ्रष्ट कर दी। हम लोग भाग्यवान है प्रभुपाद की कृपा से बचे इन सारे दुर्गुणों से। इसीलिए सदैव इस परंपरा के प्रभुपाद के आश्रित भक्तों के हमें ऋणी रहना चाहिए कि कहां विषय वासना की गटर में थे, प्रभुपाद ने हम जैसे हजारों लोगों करोड़ों लोगों को भक्ति रस समुद्र में डाल दिया है, गटर से निकाल के गंगा में डाल दिया है। अब हमारा कितना बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम सेवारत रहे, शुद्ध रहे अपनी भक्ति को, नहीं तो क्या क्या कचरा खा पी रहे थे। महाप्रसाद गोविंद हो रहा है बड़े, तो कभी भूलना नहीं चाहिए इन वैष्णवों के इन ऋणों को, और इसका ऋण अदा करने के लिए हमें शुद्ध भजन करके इसका प्रचार करना चाहिए, तब कृपा बरसती है। और आप ये याद रखिएगा कि आप कितने बड़े स्कॉलर हो, ज्ञानी हो, काउंसिलर कुछ भी बन जाओ, माया नहीं छोड़ेगी। ज्ञान देने के बाद भी अज्ञान पकड़े रहेगा। कई लोग प्रवचन करते हैं और खुद में वही सारे दोष होते होते कि नहीं, प्रवचन करते, कितनी बार हम प्रवचन कर चुके हैं महाप्रभु के श्लोकों का, त्रिनादपि सुनी चेन, सहन करो वृक्ष की तरह, तू तो कर पहले पत्ते की तरह, वृक्ष की बात छोड़। कहीं प्रसाद आधा घंटा लेट हो जाए तो उग्रम वीरम महाविष्णु हो जाता है, पूरा अवतार प्रकट हो जाता है तेरा। मतलब हम जो बोल रहे वो है थोड़ी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव आचार्य गुरु की कृपा से हम भजन कर पाएंगे और इस माया से बच पाएंगे। अपने ज्ञान तप के ऊपर केवल अहंकार बढ़ेगा, और अंततः तो अगर भजन कृप अगर अनुगत्य नहीं रहा ना, शरणागति नहीं रही ना, तो यही ज्ञान यही तप यही साधना अहंकार बढ़ा के अपराध तक ले जाएगी। देख रहे हैं हम लोग, ये हो रहा है सब जगह। अगर हम आश्रय में नहीं है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहा है, कहे है आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे आर सब मरे अकारण। जो गुरु शास्त्र आदेश आश्रय में भजन करेगा वो सेफ है, नहीं तो जैसे ही ट्रैक गया डाउन किया तो एक्सीडेंट सामने, रॉन्ग ट्रैक में चलना मतलब ज्यादातर गाड़ी चलेगी नहीं प्रभु जी। तो ये काल कन्या बुढ़ापा हमारे पीछे भी लगी है, जैसे जैसे कोई शेरनी कोई कोई वाघन टाइगर की पत्नी पीछे दौड़े, ऐसे ही जरा बुढ़ापा हम सबके पीछे है, लेकिन कृष्ण भक्ति ये महामंत्र हमें इससे बचाएगा। आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा बाहर से आता है लेकिन उसका मन कभी बूढ़ापा स्वीकार नहीं करता, वो ऑलवेज एंगेज कृष्ण सर्विस रहता है, उनको कोई बूढ़ापे से मतलब है। लेकिन अगर सही ध्रुव जैसा सनकादिक मुनि नारद सुखदेव ये जो हमारे भागवत के आचार्य है उनको अगर हम फॉलो करें तो हम वास्तविक जो बाह्य बुढ़ापा है उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि हमारा आहार विहार अगर शुद्ध रहे तो अपने आप रोग कम होंगे। जीजी विषय जो ईशोपनिषद कहता है 100 वर्ष तक हमारा रिजर्व है, हमारा इच्छा हम कर सकते हैं और जी सकते हैं, उपनिषद छूट देता है 100 वर्ष की तो। लेकिन हम लोग ने आहार विहार इतना बिगाड़ दिया है, ये झुणका भास्कर वड़ा पाव ये सब चल रहा है ना, 60-70 में तो विकेट डाउन पेवलियन में चले जाते हैं। सदी कौन कर रहा है आज तक, कोई खिलाड़ी नहीं कर रहा है। नहीं तो पहले क्या आप गांव में देखो बूढ़े बूढ़े लोग कितने साल के, बोले 100 साल का, 150 साल का, 125 साल का, और चलते वो लोग 10-10 किलोमीटर और हमको उठा के लेके जाना पड़ता है 50 साल 60 साल वाले। आहार विहार की कमी हो गई, लेकिन अगर वो कृष्ण प्रसाद हो जाए, सेवारत शरीर हो जाए और भोगों से अगर विरक्ति हो जाए तो वास्तविकता को हम भी प्राप्त कर सकते, फिर काल कन्या के सामने हम भी मुस्कुरा सकते कि देखो देखो सस्मित, एक बड़ा सुंदर शब्द है सस्मित, ये जो यवनेश्वर है भय है, भय को भी मुस्कुराना सिखा दिया नारद जी ने। नहीं तो डर कभी मुस्कुराता है, मान लीजिए आप डर में ऐसे डरोगे, ये मेल नहीं हो रहा है। एक तरफ भय है, यवन मतलब डर, और क्या कर रहा है भय, हंस रहा है क्योंकि नारद जी की कृपा पात्र है ये भय। हमारा भय भी मुस्कुराता है, अभय चरणार विंद रे भजहु रे मन सीनम यद विभेति स्वयं भयम आपन्न संस्कृतिम घोरा। कितना भागवत के श्लोक आप याद कर सकते हो, या हमारे आचार्यों के भजन जो भागवत के श्लोकों का सार है। भगवान कहते हैं कि विवशो अगर हरिनाम घृणन है तो काल भी इससे डरता है, कृष्ण काल के भी काल है, भगवान शिव महाकाल है, वो महाकाल भी इस बंसी वाले के भगत है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो अभय चरणारविंद का आश्रय लिया है तो फिर भय काहे रहेगा। तो नारद जी कृपा पात्र थे ये, इसलिए यवन भाई भी मुस्कुरा रहा, सस्मित और अभाषत उस कन्या से बोला। अब क्या बोला वो तो कल बात होगी, लेकिन बोलते हुए मुस्कुराते हुए बोला, कम से कम इतना हम सीख जाए, मुस्कुराना। ये भगवान वृंदावन चंद्र का सबसे बड़ा प्रसाद। अब हमारे कृष्ण को देखो, जब देखो तब नींद में भी मुस्कुरा रहे, लोगों को लगता है जग रहा है क्या। नयनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम अधरम, है ना वो मधुराधिपते अखिलम, वो तो हंसता ही रहते। कितने बड़े बड़े असुर आते थे वृंदावन में, भगवान हंसते रहते थे। हम रुक्मणी मंगल सुना रहे, महाराज जी इस पर व्याख्या कर रहे थे कि वो शिशुपाल बोला सैनिकों को गुस्सा होकर, तुम लोग मेरा पगार खाते हो, मेरी शादी थी, तुम लोग को फ्री में लड्डू खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, सालो तुम लोग कर क्या रहे थे। वो काला ले मेरी दुल्हन को लेके चला गया और तुम लोग गा रहे थे दिल वाले दुल्हनिया, एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई भी दूल्हा नाराज होगा ना जब दुल्हन को और ले जाए वो भी मंडप से, तो बेचारा शिशुपाल का गलती नहीं है। हम तो शिशुपाल की सराहना करते कि बढ़िया बढ़िया बोल रहा है बेचारा। कोई भी होगा नाराज होगा यार, किस कार्ड मेरे नाम का है, दुल्हन मेरी थी और मैं बैंड बाजा का खर्चा किया, सारा बिल मैं चुका रहा हूं और दिल वो ले जाए और कैसे काम करेगा बताओ। तो सारे सैनिकों को पीटूंगा, बोले मारूंगा, तुम लोग उसको मारे क्यों नहीं, तलवार नहीं थी तुम्हारे हाथ में, भाला नहीं था। उसने कहा सब था, तो फिर समस्या क्या थी। बोले वो कन्हैया ऐसे मुस्कुराया ना, तो उसकी हंसी में हम फंसे सब लोग, तो हम तलवार चलाना भूल गए महाराज। और कई सैनिक तो कोमा में चले गए प्रभु जी, हम तो कम से कम खड़े हैं उसकी मुस्कुराहट से, कई लोग तो अपना भान भूल गए, गिरे पड़े। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जी, भगवान का मुस्कुराना भी। और हम कृष्ण के भक्त है, कम से कम इतना सीख लो। कई बार लोग कथा में आते हैं या भक्त होकर भी ऐसे बैठते हैं काला मुंह करके, मुंह चढ़ा के, लगता है कि पूरे खानदान को हमने ही मारा है इसके, इतने धीर गंभीर सीरियस लगता है कि सारा भागवत इसी में भरा है ज्ञान, कि धीर व्यास के अवतार हो गए। ये भी शोभा नहीं देता भक्तों को, धीर गंभीरता अपनी जगह है, लेकिन कम से कम आज्ञा देते हुए भक्तों को, ये करो ऐसे करना चाहिए, करिए प्रभु, एकदम मुस्कुरा के बोले वो पाप भी कर देगा, सेवा क्या। अब संसार से ये तो सीखो, वो लोग पाप करा रहे मुस्कुरा मुस्कुरा के रेस्टोरेंट में होटल में सब जगह, और हम लोग सेवा नहीं करा पा रहे भक्तों से, चिड़चिड़ा स्वभाव बना के। क्या महाप्रसाद मधुर खाने वाला, मधुर महामंत्र बोलने वाला मुस्कुरा नहीं सकता। इसलिए आज से ये सीख जाओ कम से कम, देखो भय मुस्कुरा रहा, हमको तो कोई भय नहीं है। सस्मित, स्मित शब्द पर विचार किए, मुस्कुराना, स्मित संस्कृत वर्ड से, हमको अंग्रेजी में उसको स्माइल कहते हैं हम लोग। उसकी बात क्या है, छह प्रकार के हास्य होते हैं, उसमें प्रथम हास्य का प्रकार है, सॉरी 9 बजिया ओके पूरा कहते हैं। और सस्मित मतलब ऐसा मुस्कुरा, मतलब दांत जिसमें न दिखे, चेहरे पर आनंद की रेखा हो और खिला हुआ कमल की तरह मुखड़ा हो और गाल जैसे मुस्कुराते हुए थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, और दांत जिसमें न दिखे, होठों में दबी हंसी हो, उसे स्मित कहते हैं। दांत दिख जाए उसे स्मित नहीं कहते, उसे हास्य कहते हैं, ये सेकंड है। थर्ड है उसमें साउंड निकले, चौथे में खुर्सी हिलता करता, पांचवा आटा असुर लोग, ये सब हास्य के स्टेप है, तो वो वाला मत करिए, लेकिन पहला स्टेप पर तो आ जाइए। और चाणक्य ने लिखा है कि अगर आप हंसना सीख लिए ना, तो आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ा दंड होगा, वो सोचता रहेगा ये हंसता क्यों है, वो दुखी रहेगा। आपका मुस्कुराना दुनिया के लिए दर्द हो जाएगा, आपके दुश्मन सब टेंशन में रहेंगे कि जब देखो तो हंसता रहता है यार। तो कम से कम दुश्मनों को भी सजा दे सकते हो खुद मुस्कुरा के, और 50 नहीं 90% समस्या का सोल्व आपकी मुस्कुराहट से हो जाएगा, चाहे मंदिर में एंटर हो या घर में। सामने वाला अपने आप भूल जाता है सब। तो भाई भी सस्मित भाषत, हम इतना ही निवेदन करते कि जब भी बोले मुस्कुरा कर बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में लाया था पानीहाटी महोत्सव है, उसकी कथा कल परसों भक्त लोग सुनाएंगे। एक्चुअली मैं भी थोड़ा इस पर जानना चाहता था लेकिन भागवत के शब्दों में रह गया और समय हो गया। थैंक यू वृंदावन चंद्र भगवान मंदिर की सारे भक्तों को, कॉन्ग्रीगेशन मैनेजमेंट को, मुझे वाणी सेवा का अवसर दिया। कुछ त्रुटि हो तो आप भक्त लोग क्षमा करना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कुंडल कृष्ण प्रभु, ये भावनगर से आए हैं, हम सब के हृदय में भी भक्ति का भाव जगाने के लिए आए हैं बहुत सुंदर तरीके से हंसा के, और उनको धन्यवाद देते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज हमारा मंथली संकीर्तन फेस्टिवल है, तो इसे प्रभु जी ने अभी बताया कि हंस के बोलने से डिवोटीज सेवा कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हमको स्नान तो नहीं आता है तो प्रभु जी का आदेश है। तो और आज रघुनाथ दास गोस्वामी का फेस्टिवल भी है, नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने आज का ये फेस्टिवल बनाया है। तो आज हम जा रहे हैं मंथली संकीर्तन फेस्टिवल को, आज शाम को 5 बजे यहाँ पर हम जाएंगे, अलग अलग जगह हम जाते हैं। तो जिन भक्तों को ये मंथली संकीर्तन फेस्टिवल में भाग लेना है तो अभी से वृंदाव देवी इंफॉर्मेशन सेंटर में अपना नाम और फोन नंबर दे सकते हैं ताकि आपको हम लेके जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण प्रोग्राम की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।